नमस्कार, आज हम विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर पर बात करने वाले हैं। चैप्टर वन, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस।
नमस्कार। हाँ, ये चैप्टर विज्ञान की एक अच्छी बुनियाद रखता है।
तो आज का हमारा मकसद है इस चैप्टर की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझना, जैसे विज्ञान क्या है, ये काम कैसे करता है
और कैसे ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है।
हाँ, और वो अपना साइंस बडी eb.ai, उसका भी जिक्र है इसमें।
बिल्कुल।
तो शुरू करें। बस ये याद रखना है कि विज्ञान सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये तो जिज्ञासा, देखने और प्रयोग करने का तरीका है।
बिल्कुल सही। और ये अध्याय हमें दिखाता है कि विज्ञान कैसे, मतलब एकदम छोटी चीजों से लेकर, जैसे सेल्स,
हाँ सेल्स
से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक हर चीज को समझने में मदद करता है।
सही कहा, ये गैलेक्सीज से लेकर सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक की बात करता है, और ये भी कि हम सब, मतलब पौधे हों या जानवर, सब सेल से बने हैं, है ना कमाल की बात।
हाँ, ये जीवन की बुनियादी इकाइयां हैं, और पौधों में, जानवरों में उनके काम के हिसाब से अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं।
अच्छा, और चीजों को समझने के लिए हम उनके गुण, मतलब प्रॉपर्टीज देखते हैं।
हाँ बिल्कुल, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं?
फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हैं जिन्हें हम बिना चीज को बदले देख या माप सकते हैं, जैसे पानी का रंग देखना।
अच्छा।
या ये देखना कि वो ठोस है, मतलब बर्फ है, या तरल है।
समझ गया। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो कैसे अलग हैं?
केमिकल प्रॉपर्टीज बताती हैं कि कोई चीज कैसे बदलती है या दूसरी चीजों से रिएक्ट करती है।
जैसे कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे किताब में हल्दी का उदाहरण दिया है।
हल्दी का पीला दाग,
अगर साबुन जो बेसिक होता है उस पर लगे तो
हाँ वो लाल भूरा सा हो जाता है।
बिल्कुल, ये हल्दी की केमिकल प्रॉपर्टी है, वो यहाँ एक इंडिकेटर की तरह काम कर रही है।
अच्छा, सोते हैं।
बिल्कुल।
तो ये गुणों की बात हमें बदलावों तक ले आती है। दुनिया तो लगातार बदल रही है ना।
हाँ, हर पल।
और विज्ञान इन बदलावों को समझने में मदद करता है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस।
फिजिकल चेंज मतलब सिर्फ रूप बदला, चीज वही रही, जैसे बर्फ का पिघलना।
एकदम सही, पानी तो पानी ही रहा, लेकिन केमिकल चेंज में कोई नई चीज बन जाती है।
जैसे लकड़ी का जलना, वो राख और धुआं बन जाती है।
हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी नियम काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास।
अच्छा, वो क्या है?
इसका मतलब है कि किसी भी बदलाव में, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल, पदार्थ यानी मैटर न तो बनता है न ही नष्ट होता है,
बस उसका रूप बदल जाता है।
हाँ, बस रूप बदल जाता है, कुल मात्रा उतनी ही रहती है। दिलचस्प। और इन बदलावों में एनर्जी का भी तो रोल होता है, खासकर हीट का।
बिल्कुल, हीट की भूमिका बहुत अहम है, और हीट हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ जाती है।
हाँ, ये तो पता है।
इसके तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन।
कंडक्शन मतलब सीधा छूने से, जैसे गर्म चम्मच।
हाँ, कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स में, मतलब तरल या गैस में, बहाव के जरिए, जैसे पानी का उबलना।
और रेडिएशन,
वो वेव्स के जरिए, जैसे सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है।
बिल्कुल। और हीट से क्या क्या होता है? तापमान बदलता है, स्टेट बदल सकती है,
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस।
हाँ,
चीजें फैलती हैं और केमिकल रिएक्शंस भी तेज हो जाते हैं।
अरे हाँ, जैसे वाटर साइकिल, वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ना।
एकदम सही, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब सूरज की एनर्जी से चलने वाले फिजिकल चेंजेस ही तो हैं।
कमाल है। और ये सब सिर्फ नॉन लिविंग चीजों के लिए नहीं है, विज्ञान जीवन को भी तो समझता है।
हाँ बिल्कुल, सभी जीवित प्राणी कुछ खास प्रक्रियाएं करते हैं,
जैसे न्यूट्रिशन लेना, पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं,
और जानवर दूसरों को खाकर पोषण लेते हैं। फिर रेस्पिरेशन है एनर्जी के लिए,
ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, और एक्सक्रीशन यानी वेस्ट बाहर निकालना, ये सब जीवन की पहचान है।
बिल्कुल। और जैसे जीवों के अपने सिस्टम्स होते हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी के भी हैं।
हाँ, एटमॉस्फेयर यानी हवा, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, लिथोस्फीयर यानी जमीन,
और बायोस्फीयर जहाँ जीवन है, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे वाटर साइकिल दिखाता है।
और इकोसिस्टम में भी तो यही होता है, लिविंग चीजें मतलब बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं।
हाँ, पौधे खाना बनाते हैं, उन्हें हर्बिवोर खाते हैं, फिर उन्हें कार्निवोर खाते हैं, एक पूरी चेन है।
और यहीं पर शायद मानव गतिविधियों का असर आता है और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत।
बिल्कुल। हमें समझना होगा कि हमारे काम इन सिस्टम्स को कैसे प्रभावित करते हैं, ताकि हम आज की जरूरतें पूरी करें लेकिन भविष्य के लिए भी संसाधनों को बचा कर रखें।
सही बात है। अच्छा, और इस सब को समझने के लिए मापना भी तो जरूरी है, समय, दूरी।
हाँ, मापन बहुत जरूरी है। समय मापने के तरीके कैसे विकसित हुए हैं, सन डायल्स और वाटर क्लॉक से लेकर आज की एटॉमिक क्लॉक्स तक।
और प्रकाश, वो सीधी रेखा में चलता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, इसीलिए तो छाया बनती है।
हाँ, और इसी से सोलर और लूनर इक्लिप्स भी समझ आते हैं। बस ये देखना है कि सूरज, पृथ्वी और चांद में से कौन किसके बीच आ गया।
बिल्कुल, और पृथ्वी की अपनी गतियां, रोटेशन और रिवोल्यूशन।
हाँ, रोटेशन मतलब अपनी धुरी पर घूमना, जिससे दिन और रात होते हैं, ये करीब 24 घंटे में होता है।
और रिवोल्यूशन मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, जिसमें लगभग 365.25 दिन लगते हैं।
बिल्कुल।
और सबसे मजेदार बात, मौसम पृथ्वी के सूरज से दूर या पास होने की वजह से नहीं बदलते।
नहीं,
बल्कि पृथ्वी के अपनी एक्सिस पर झुके होने मतलब टिल्ट और उसके रेवोल्यूशन के कारण बदलते हैं।
एकदम सही, ये झुकाव ही तय करता है कि साल के अलग अलग समय सूरज की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं।
तो देखिए, कहाँ से शुरू किया था हमने, सेल से, और बात पहुँच गई ब्रह्मांड की गतियों तक।
हाँ, विज्ञान का दायरा बहुत बड़ा है।
ये वाकई हर चीज को समझने का एक तरीका है, पदार्थों के गुण, दुनिया के बदलाव, जीवन की प्रक्रियाएं, पृथ्वी के सिस्टम, समय, प्रकाश, सब कुछ। और ये शुरू होता है सवालों से।
हाँ, और सब कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे पदार्थों के गुण समझें तो उनका इस्तेमाल पता चलता है, बदलावों को समझें तो वाटर साइकिल जैसे पैटर्न दिखते हैं,
जीवन की प्रक्रियाएं जानें तो इकोसिस्टम्स की अहमियत पता चलती है,
और मापन हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है।
तो इस अध्याय का निचोड़ शायद यही है कि जिज्ञासा, वो जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी, वही विज्ञान की असली बुनियाद है।
बिल्कुल।
तो आज के लिए शायद यही सवाल है कि अपने आसपास देखें और सोचें, ऐसी कौन सी छोटी सी चीज है जो एक बड़ा वैज्ञानिक सवाल बन सकती है।